प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात् नेमं विरिञ्चो न भवो श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात् नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात् नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात्
निस्संदेह
अंग संशया
भगवान के अर्धांगिनी होकर
भगवान के अर्धांगिनी होकर
भी प्रसादम
प्रसादम
कृपा
कृपा
ले भिरे
प्राप्त किया
गोपी
माता यशोदा यत्तत
जो जैसा है
प्राप्त किया
विमुक्तिदार
इस जगत से
मुक्ति दिलाने वाले
कृष्ण से
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद न तो भगवान ब्रह्मा न भगवान शिव न ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान से कभी ऐसी कृपा प्राप्त कर सकती हैं जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की। तात्पर्य यह माता यशोदा तथा अन्य भगवत भक्तों का तुलनात्मक अध्ययन है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है एकल ईश्वर कृष्ण आर सर्वभृत्य कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है शेष सब उनके दास हैं। कृष्ण में भृत्यवश्यता अर्थात अपने भृत्य या दास के अधीन होने का दिव्य गुण पाया जाता है। यद्यपि सभी भृत्य हैं और कृष्ण में भृत्यवश्यता का गुण पाया जाता है किंतु माता यशोदा का पद सर्वोच्च है। भगवान ब्रह्मा कृष्ण के भृत्य तथा आदि कवि हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये फिर भी उन्हें माता यशोदा जैसी कृपा प्राप्त नहीं हो पाई। भगवान शिव जी तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है वैष्णवानाम यथा शंभु हो भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव की कौन कहे। भगवान की नित्य संगिनी लक्ष्मी को भी जो सदैव उनके शरीर के साथ रहती हैं ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए महाराज परीक्षित यह सोचकर चकित थे कि आखिर माता यशोदा तथा नंद महाराज ने अपने पूर्व जन्मों में क्या किया जिससे उन्हें कृष्ण के केवल माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। इसी श्लोक में तीन न आए जब किसी बात को तीन बार कहा जाए तो समझना चाहिए कि उस पर बल दिया जा रहा है। इस श्लोक में तीन बार न ले भिरे आया है फिर भी माता यशोदा का सर्वोच्च पद प्राप्त है इसीलिए कृष्ण पूरी तरह उनके वश में हो गए हैं। विमुक्तिदार शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुक्ति कई प्रकार की होती है सायुज्य सालोक्य सारूप्य साष्टी तथा सामीप्य किंतु विमुक्ति का अर्थ है विशेष मुक्ति। जब कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करके प्रेम भक्ति के पद पर होता है तो वह विमुक्ति प्राप्त कहा जाता है। इसीलिए न शब्द आया है। प्रेमा के उस उच्च पद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमा पुमर्थो महान कहा है और माता यशोदा प्रेम व्यापार में ऐसे ही उच्च पद पर कार्य करती हैं इसीलिए वे नित्य सिद्ध भक्त हैं। कृष्ण की लादनी शक्ति की अंश रूप अर्थात अपने विशेष भक्तों रूपी अंशों द्वारा अपने दिव्य आनंद को भोगने की शक्ति आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ऐसे भक्त साधन सिद्ध नहीं होते हैं। अनुवाद को दोहराइए
न तो भगवान ब्रह्मा
न भगवान शिव,
न भगवान शिव,
नहीं भगवान की अर्धांगिनी,
नहीं भगवान की अर्धांगिनी,
लक्ष्मी ही,
लक्ष्मी ही,
इस भौतिक जगत में,
इस भौतिक जगत में,
क्षमा कीजिए, इस भौतिक जगत से,
इस भौतिक जगत से,
मोक्ष दिलाने वाले,
मोक्ष दिलाने वाले,
भगवान से,
भगवान से,
कभी ऐसी कृपा,
कभी ऐसी कृपा,
प्राप्त कर सकती है,
प्राप्त कर सकती है,
जैसे,
जैसे
माता यशोदा ने,
माता यशोदा ने
प्राप्त की,
प्राप्त की।
ओम ज्ञान अधिग्रहांतस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकामह्यं ददाति स्वकान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीपादपद्मं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहकरललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेक्षाय भूतले श्रीपते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ये श्रीमद् भागवतम का एक महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसे हम जानते हैं, हम सब कई बार सुन चुके हैं कि भगवान से प्रेम करने के पांच रस होते हैं, जिनमें से एक रस है वात्सल्य रस, जिसमें भक्त भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानता है, चाहे वो माता के रूप में हो या पिता के रूप में हो। तो माता यशोदा ये श्री कृष्ण की माता है, वात्सल्य रस की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। और नंद महाराज वो पिता है भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन माता यशोदा जैसे उनका स्थान नहीं है। माता यशोदा का पहला नंबर है और दूसरा है नंद महाराज का। तो वात्सल्य रस और अन्य रसों के बारे में श्रीमद् भागवत में अनेक श्लोक बताए गए हैं और वैष्णव आचार्यों ने इन श्लोकों को चुना है जो कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक हैं हर एक रस के संदर्भ में। तो वात्सल्य रस के बारे में ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है जो आचार्यों ने बताया है। नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादं लेपिरे गोपी यत्त प्राप विमुक्तिदात। साथ साथ और एक दो श्लोक भी हैं, जैसे कि परीक्षित महाराज ये भी प्रश्न करते हैं या उनके मन में ये विचार आता है, नंदः किमकरो ब्रह्मन् श्रेय एव महोदयं यशोदा च महाभागा स्तनम हरी। कि ऐसे कौन से श्रेय या कोई विशेष कार्य जैसे तपस्या आदि नंद महाराज ने किए होंगे जिससे कि महा उदय, ऐसे अहो सौभाग्य का उदय हुआ या उनको ऐसे एक विशेष अवसर प्राप्त हुआ कि वो उनके पिता बन गए भगवान कृष्ण के। और माता यशोदा ने भी ऐसे कौन से अद्भुत तपस्या या पुण्य आदि किए होंगे जिनके द्वारा उनके स्तनों का पान स्वयं परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो ऐसे तीन चार श्लोक विशेष करके आचार्य ने बताए हैं जो वात्सल्य रस के खास श्लोक माने जाते हैं। तो उनमें से ये वाला भी है जिसमें ऐसे बताया जाता है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, न इमं विरिंचः न भवः न श्री, कि जो भाग्य माता यशोदा को मिला वो न तो विरिंचः, विरिंचः मतलब ब्रह्मा जी, न भव मतलब शिव जी को भी नहीं मिला और न श्री लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिला। यद्यपि लक्ष्मी देवी अंग संशया है, वो भगवान श्री नारायण के अंग के स्पर्श रहती हैं, उनके वक्षस्थल पर स्थित रहती हैं या उनके चरण कमलों को की सेवा करती हैं, तो ऐसे एक महान सौभाग्य ये इन तीनों को भी नहीं मिला। वैसे ब्रह्मा जी जैसे कि श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, वो आदि कवि हैं, सबसे बड़े दार्शनिक हैं, इस ब्रह्मांड के सबसे पहले व्यक्ति हैं, भगवान ही उनके पिता हैं प्रत्यक्ष रूप से, उनके अन्य कोई माता पिता नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी को कभी कभी स्वयंभू कहा जाता है कि जिनके कोई भौतिक सृष्टि के माता पिता नहीं है, अपने आप ही उनका जन्म हुआ। हाँ, जन्म तो भगवान के द्वारा हुआ, इसलिए उनका नाम स्वयंभू है। तो इतना होने के बाद भी, ब्रह्मा जी एक बड़े भक्त होने के बाद भी, उनको वो पद या वो विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ जो माता यशोदा को। जहां तक शिव जी की बात है, वैष्णवानां यथा शंभु, ऐसे भागवत में बताया गया है कि शिव जी जैसे कोई वैष्णव नहीं है, फिर भी उनको ये भाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो कि माता यशोदा को प्राप्त हुआ। और ब्रह्मा जी शिव जी की बात तो दूर है, स्वयं लक्ष्मी देवी जो कि भगवान की अर्धांगिनी है, वो भी इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के संबंध में सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाए जो माता यशोदा ने किया। तो ऐसी क्या बात थी जिसके कारण सुखदेव गोस्वामी ऐसे कह रहे हैं, प्रसादम मेधिरे गोपी, ये गोपी ही माता यशोदा को क्या कृपा प्रसाद लेधिरे प्राप्त हुआ जो कि इन तीनों को भी नहीं प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया जाता है, यत तत् प्राप विमुक्ति दात, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो कि मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से कौन सी माता यशोदा को ऐसी कृपा प्राप्त हुई जो कि ब्रह्मा जी शिव जी और लक्ष्मी देवी को स्वयं नहीं प्राप्त हो पाया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि विमुक्ति शब्द का अर्थ है विशेष मुक्ति। मुक्ति शब्द जब हम सुनते हैं तो साधारण अर्थ ये निकलता है कि जो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, जो अद्वैत पथ में होते हैं, निराकारवादी होते हैं, उनके मन में मुक्ति शब्द का तात्पर्य होता है मोक्ष, निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना। परंतु कृष्ण भक्तों के लिए मुक्ति शब्द का तात्पर्य ऐसा नहीं है। मुक्ति यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति, मुक्ति शब्द का तात्पर्य है कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और स्वरूप का अर्थ है जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम सब श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। और ऐसे स्वरूप में जब हम निष्ठा पूर्वक स्थित हो जाते हैं तो उसे मुक्ति कहते हैं, और ऐसी अवस्था में हम मुक्त ही कहलाते हैं। बल्कि मुक्ति की अवस्था के बाद ही शुद्ध भक्ति शुरू होती है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समह सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित हो जाता है, अर्थात जब आत्मा के स्तर में स्थित होता है, अपने आप को शरीर से भिन्न जानता है, अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो ऐसी अवस्था में वो पराभक्ति की प्राप्ति कर सकता है। इसके पहले जितने भी भक्ति की अवस्थाएं हैं वो शारीरिक भावना से मिश्रित होती है, प्रदूषित होती है, शिथिल हो जाती है वो भक्ति की भावना ऐसे शारीरिक भावना के कारण। परंतु ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होके फिर हम शुद्ध भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति करके हम मुक्त हो जाते हैं, नहीं, मुक्त होकर फिर हम शुद्ध भक्ति करते हैं। परंतु शारीरिक भावना से मुक्त होने के लिए भी हम साधन भक्ति करते हैं, इसलिए साधन भक्ति साध्य है और साधन भी है, दोनों है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि जब हम ऐसे मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं जिससे कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति जागृत होती है, तो उसे विमुक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्ति को विमुक्ति कहते हैं। तो जब यह बताया जाता है यत तत् प्राप विमुक्तिदात कि भगवान श्री कृष्ण विमुक्ति प्रदान करने वाले हैं, तो हमें समझना चाहिए कि इसका अर्थ है कि वो श्री कृष्ण जो कि प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। वैसे भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रघु गोस्वामी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है मुक्ति ददाति स्मर भक्ति योगम कि भगवान श्री कृष्ण बड़े आसानी से मुक्ति प्रदान करते हैं परंतु विमुक्ति बहुत कम देते हैं। विमुक्ति अर्थात प्रेम भक्ति, मुक्ति आसानी से देते हैं लेकिन प्रेमा भक्ति आसानी से नहीं देते हैं। तो इसका कारण क्या है वो भी रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब भगवान प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं किसी भक्त को तो वो उस भक्त के वश में आ जाते हैं, इसलिए भगवान इतने आसानी से किसी को प्रेम नहीं देते हैं, प्रेमा भक्ति प्रदान नहीं करते हैं, बहुत सोच समझ के वो प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि ये भक्त और भगवान का सुंदर संबंध है, भक्त के प्रेम से भगवान श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति या उत्तम भक्ति की छह लक्षणों में से अंतिम लक्षण जो सर्वश्रेष्ठ लक्षण है वो है श्री कृष्ण आकर्षणी कि भक्ति श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। और ऐसे भक्ति के सिवाय और कोई भी वस्तु नहीं है जो कि श्री कृष्ण को आकर्षित कर सकती है। तो जब ये भक्ति किसी भक्त के हृदय में होती है, शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति, तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्ति से आकर्षित होकर उस भक्ति के वश में आ जाते हैं। एक सूक्ष्म अंतर यहां प्रभुपाद जी पिछले श्लोक के तात्पर्य में ही बताते हैं। पिछले श्लोक में यह बताया गया है कि भृत्य वश्यता, ये भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। भृत्य अर्थात दास, सेवा। तो भगवान श्री कृष्ण का ये एक सुंदर गुण है कि वो अपने भक्त के वश में आ जाते हैं, अपने भृत्य अपने सेवक के वश में आ जाते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल ऐसा नहीं है कि वो भृत्य के वश में आ जाते हैं, वो भृत्य के भक्ति के वश में आ जाते हैं। ये महत्वपूर्ण अंतर हमें जानना चाहिए। अंतर क्यों है इसमें, अपने भृत्य के वश में आना और भृत्य के भक्ति के वश में आना, इसमें सूक्ष्म अंतर यह है कि जब तक कि भृत्य के हृदय के अंदर उस तरह की शुद्ध प्रेमा भक्ति जागृत नहीं होती तब तक भगवान उसके वश में नहीं आते। भगवान उस भृत्य के वश में इसलिए आते हैं कि उसके हृदय में ऐसी प्रेमा भक्ति है। यदि प्रेमा भक्ति किसी के हृदय में नहीं है तो उसके वश में नहीं आएंगे भगवान। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, अर्जुन अनेक आदेश देते थे श्री कृष्ण को युद्ध के भूमि पर कि बाएं चलो, दाएं चलो, रुक जाओ, तेजी से जाओ, और आज्ञाकारी होकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समस्त आज्ञाओं का पालन करते जा रहे थे। तो क्या इसका मतलब है कि भगवान स्वतंत्र नहीं है? नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर अवस्था में भगवान स्वतंत्र ही रहते हैं, परंतु वो अपने भक्त अर्जुन के प्रेम के वश में आ गए, इसलिए प्रेम के वश में आकर उन्होंने अर्जुन की आज्ञाओं का पालन किया। इसलिए भगवान हमेशा स्वाधीन रहते हैं, हमेशा वो अपने आप पर ही निर्भर रहते हैं और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते। वो पूरी तरह से स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, फिर भी उनके ये एक बहुत अच्छा गुण है भृत्यवश्यता, कि अपने भृत्य के वश में वो आ जाते हैं, क्योंकि भृत्य के हृदय में प्रेम रहती है। भक्ति सामने सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण के 64 गुणों का उल्लेख किया है और संक्षेप में इन 64 गुणों का वर्णन भी किया है। उनमें से इन 64 गुणों में से 40वां गुण है प्रेम वश्यता। जैसे यहां भृत्य वश्यता की बात की गई थी 19वें श्लोक में, प्रभुपाद वहां रूप गोस्वामी प्रेम वश्यता का उल्लेख करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम के वश में आ जाते हैं अपने भक्तों के, और इसके लिए वो दो उदाहरण देते हैं प्रमाण के रूप में। पहला उदाहरण है सुदामा विप्र का। सुदामा विप्र द्वारका गए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। वैसे उनकी पत्नी ने उनको भेजा था कि जाके कुछ मांग के ले आओ, आखिर तुम तो कृष्ण के मित्र हो और कृष्ण अपने मित्र की सहायता करना पसंद करेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सुदामा की पत्नी भी भक्त थे और वो अपने पति की इस दरिद्र अवस्था को देख नहीं पा रही थी। तो सुदामा अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए चले गए श्री कृष्ण के पास। वैसे श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त और मित्र होने के कारण सुदामा विप्र कुछ चाहते नहीं थे उनसे। उन्होंने भी सोचा, चलो मेरी पत्नी तो चाहती है कि मैं कृष्ण के पास जाऊं और कृष्ण मेरे अच्छे मित्र हैं, तो मुझे श्री कृष्ण का संग करने का अवसर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, चलो। तो वो निकल पड़े। तो सुदामा विप्र के हृदय के अंदर कोई भौतिक भावना नहीं थी। वो न तो भोजन चाहते थे कृष्ण से, न कोई धन चाहते थे, केवल श्री कृष्ण से मिलने के लिए वो आतुर थे प्रेम के कारण। और जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे, श्री कृष्ण इतने आनंदित हुए कि उन्होंने श्री सुदामा विप्र को अपने ही शैया पे बिठाया और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी के साथ में सुदामा विप्र के चरणों को धोया। फिर सुदामा विप्र की आरती उतारी भगवान कृष्ण ने और उनके पोहे भी खा लिए। तो ऐसे करते समय सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आए, प्रेम के आंसू, अपने पुराने मित्र सुदामा विप्र से मिलके। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सुदामा विप्र के हृदय में जो शुद्ध कृष्ण प्रेम था उससे आकर्षित हुए कृष्ण, और इतने आकर्षित हुए कि सुदामा विप्र के प्रेम के वश में आ गए। वश में आकर उन्होंने ऐसी साधारण सेवा सुदामा विप्र की, उनके चरण धोए। अब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने ऊंचे उद्देश्य है योगी जनों के लिए, योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए कि वो मात्र ध्यान मात्र कर सकते हैं, इससे ज्यादा उनकी प्राप्ति भी नहीं कर सकते। वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति तो हर एक भक्त का जीवन का लक्ष्य रहता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की स्पर्श करने मात्र से जल शुद्ध हो जाता है, चरणामृत बन जाता है और उसका पान हम करते हैं, हम इसको हमारे सर के ऊपर भी धारण करते हैं। तो ऐसे चरण कमलों वाले श्री कृष्ण अब सुदामा के चरणों को धो रहे हैं और उस चरण जल को अपने ऊपर स्वीकार कर रहे हैं, अपने रानी के ऊपर भी छिड़का रहे हैं। तो ऐसे अवस्था, ऐसे एक विरोधाभास जैसे लगता है, भगवान श्री कृष्ण जो इतने बड़े हैं, हर चीज के उद्गम हैं, उनके चरण कमल इतने पावन हैं, फिर भी वो अपने भक्त सुदामा के चरण धो रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सुदामा के हृदय में कृष्ण प्रेम है और श्री कृष्ण उस प्रेम के वश में आ गए हैं, प्रेम वश्यता। और दूसरा उदाहरण के रूप गोस्वामी देते हैं इस संदर्भ में, वो यही है जो आज हम पढ़ रहे हैं कि माता यशोदा का कृष्ण प्रेम इतना शुद्ध था, इतना तीव्र था कि भगवान श्री कृष्ण तैयार हो गए बंध जाने के लिए। नहीं तो भगवान को कौन बांध सकता है? ये संभव नहीं है। भगवान के डर के मारे सभी लोग, बड़े बड़े देवता गण भी कार्य करते हैं, अपने अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। तो माता यशोदा जो कि एक साधारण गांव की महिला थी, साधारण दृष्टि से देखा जाए तो, वो कैसे भगवान श्री कृष्ण को बांध पाए? जब माता यशोदा ने पहली बार बांधने का प्रयास किया श्री कृष्ण को, तो वो नहीं बांध पाए क्योंकि वो रस्सी दो उंगली कम पड़ गई। वैसे जब श्री कृष्ण भागने लगे तो माता यशोदा उनके पीछे पीछे भागती गई और अंत में बड़े मुश्किल से पकड़ पाई श्री कृष्ण को। अब माता यशोदा एक महिला थी, उम्र में ज्यादा थी, फिर भी कठिनाई से किसी न किसी तरह से पकड़ पाई। उधर दूसरी उदाहरण हम देखते हैं कि जरासंध और अन्य असुर जैसे काल, यवन आदि, वो श्री कृष्ण का पीछा करते जा रहे थे लेकिन कृष्ण को पकड़ नहीं पाए। आप तो जानते हैं कि जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और हर बार श्री कृष्ण ने जरासंध की सेना को खत्म कर दिया और जरासंध को हरा कर वापस भेज दिया। 18 बार जब जरासंध आने की तैयारी में थे, दूसरी ओर से काल यवन नाम का एक असुर आया और जब श्री कृष्ण ने ऐसे देखा तो वो बलराम जी के साथ धीरे धीरे से चलते चलते उनके सामने से निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को पहले ही स्थानांतरित कर दिया था द्वारका, द्वारकापुरी का निर्माण हुआ था। और जब मथुरा वासी सुबह नींद से जाके तो देखा कि वो द्वारका में है, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ये श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। तो जब श्री कृष्ण बलराम मथुरा नगरी से बाहर आए, जो कि इस समय खाली थी, कोई था नहीं वहां पे, और रणभूमि पे आके वो सीधे चलते गए, काल यवन आदि की ओर देखा भी नहीं और ये पीछे से चिल्ला रहे, कहां भाग के जा रहे हो, तुम किस तरह के क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। लेकिन परवाह नहीं की श्री कृष्ण ने, बलराम जी ने भी, वो चलते गए, बड़े आराम से चल रहे थे, दौड़ नहीं रहे थे और पीछे से काल यवन का पीछा कर रहे थे। वो दौड़े जा रहे थे काल यवन बड़ा शक्तिशाली असुर था, इतने जोर से दौड़ते दौड़ते भी वो कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहा था। हालांकि श्री कृष्ण आराम से चलते जा रहे थे, उसे लग रहा था कि अभी पहुंचूंगा, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे थे। तो श्री कृष्ण को काल यवन और नहीं जरासंध पकड़ पाए, बल्कि माता यशोदा वो कोई बड़ी योद्धा नहीं थी। शारीरिक बल दृष्टि से देखा जाए तो इतनी बलवान नहीं थी कि इतनी तेजी से भाग सके, फिर भी माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ पाई और काल यवन जरासंध आदि श्री कृष्ण को नहीं पकड़ पाए। क्यों? अंतर ये है कि माता यशोदा के हृदय में प्रेम भक्ति थी। यदि कोई कहे कि अजय आपको यह भी सोचना चाहिए कि उस समय जब माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ा वो तो बच्चे थे, शिशु अवस्था में थे, और जब काल यवन उनका पीछा कर रहे थे वो तो तरुण थे, तो बच्चे के भागने की गति में और एक तरुण के भागने की गति में अंतर तो हो गया। छोटे बच्चे को भागते हुए कोई भी पकड़ सकता है, परंतु तरुण को भागते हुए पकड़ना मुश्किल होता है। परंतु इसका उत्तर ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण तरुण की अवस्था में होते हैं या वो एक शिशु की अवस्था में होते हैं, दोनों अवस्थाओं में कोई अंतर नहीं है भगवान का। जन्म लेने के तुरंत बाद भगवान श्री कृष्ण ने पूतना जैसे भयंकर राक्षसी का वध कर दिया और इस लीला से उन्होंने साबित कर दिया कि चाहे वो नवजात शिशु हो, चाहे वो तरुण हो, चाहे वो 100 वर्ष वाले व्यक्ति हो, उनकी शक्ति में, उनकी योग्यता में, उनकी बुद्धि में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यद्यपि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के सामने एक छोटे से शिशु बनकर आए, परंतु यदि वो चाहते तो इतनी तेजी से भागते कि कोई उनका पीछा नहीं कर सकता, फिर भी माता यशोदा पकड़ पाए। और इतना ही नहीं, पकड़ने के बाद रस्सी से अंत में बांध भी पाए। शुरुआत में जब माता यशोदा बांधना चाहती थी श्री कृष्ण को, तो कृष्ण बंध नहीं पाए तो उंगली कम रस्सी पड़ गई थी, लेकिन अंत में कृष्ण ने कृपा कर दी कि मेरी माता बहुत थक गई है, इसलिए कृष्ण तैयार हुए बंध जाने के लिए अपनी माता के प्रेम से। केवल माता यशोदा से वो बांधे नहीं गए, माता यशोदा के प्रेम से बांधे गए। ये अंतर प्रभुपाद जी पिछले श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं। तो ये है भृत्य वश्यता, प्रेम वश्यता। तो जो कृपा माता यशोदा पर प्राप्त हुई कि भगवान श्री कृष्ण उनके हाथों द्वारा बंधे गए, वो ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी देवी के द्वारा भी प्राप्त नहीं हुआ। हम कभी ऐसा सुनते नहीं है कि ब्रह्मा जी या शिव जी ने श्री कृष्ण को बांध दिया, नहीं हम कभी सुनते हैं कि लक्ष्मी देवी ने भगवान कृष्ण को बांध दिया, ऐसा कभी नहीं सुनते। लक्ष्मी देवी तो वैकुंठ की स्वामिनी है, फिर भी वो ऐसा कभी नहीं कर पाए। तो भगवान श्री कृष्ण को बांधना, ये भगवान की कृपा क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी स्वेच्छा से बंधने के लिए तैयार हो गए और वो अपने भक्त के वश में आ गए। ये भगवान की कृपा है भक्त के ऊपर। तो ऐसी कृपा ब्रह्मा जी को, शिव जी को, लक्ष्मी जी देवी को भी नहीं मिला था, जो कि एक साधारण वृंदावन के गांव के रहने वाली स्त्री माता यशोदा को प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि माता यशोदा कोई साधारण गांव की स्त्री नहीं है, उनका स्थान कितना ऊंचा है इससे हम जान सकते हैं। इसलिए यहां पे वो कह रहे हैं प्रसादम लेभे गोपी यत्त प्राप्त मुक्तिदात। ऐसा प्रसाद, ऐसी कृपा माता यशोदा गोपी को प्राप्त हुई जो कि अन्य किसी को भी इस ब्रह्मांड में और वैकुंठ जगत में भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए माता यशोदा विशेष भृत्य मानी जाती है। अनेक भृत्यों में से, समस्त भृत्यों में से वो सर्वश्रेष्ठ भृत्या है। तो इससे हम जान सकते हैं कि माता यशोदा के हाथों द्वारा भगवान कृष्ण क्यों बांधे गए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तीन बार न न न कहा गया, न ले गिरे, न ले गिरे, न ले गिरे, मतलब उनको प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुआ, शिव जी को प्राप्त नहीं हुआ, लक्ष्मी देवी को प्राप्त नहीं हुआ, परंतु माता यशोदा को प्राप्त हुआ। तो माता यशोदा कितने महान है, ये तात्पर्य इस श्लोक का है। इसी बात को शुकदेव गोस्वामी हमें बताना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न है? प्रश्न ये है कि लक्ष्मी देवी माधुर्य रस में है और माता यशोदा वात्सल्य रस में है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि माता यशोदा की भक्ति लक्ष्मी देवी की भक्ति से श्रेष्ठ है? यह प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे हमें जानना चाहिए कि यद्यपि साधारण दृष्टि से माधुर्य रस अन्य रसों से श्रेष्ठ माना जाता है, फिर भी लक्ष्मी देवी का जो माधुर्य रस है वो वैकुंठ का माधुर्य रस है, जो गौरव से भरा हुआ है, जो ऐश्वर्य से भरा हुआ है। तो ऐसे माधुर्य रस में भी उतनी निकटता और उतना माधुर्य नहीं हो पाता है, परंतु वृंदावन के प्रेम में एक प्रकार की निकटता और माधुर्य होता है जो वैकुंठ में नहीं होता। तो ऐसे भाग्य कि माता यशोदा कृष्ण को बांध पाई वो लक्ष्मी देवी नहीं कर पाई, क्योंकि उनके लिए उनके पति बहुत आराध्य देव हैं, लेकिन माता यशोदा के लिए ऐसा नहीं है। माता यशोदा के लिए श्री कृष्ण कभी उनके आराध्य नहीं है। माता यशोदा के लिए कृष्ण केवल उनके बच्चे हैं, और बच्चे को माता क्या करती है, लाड प्यार करती है, कभी डांटती है। तो क्योंकि माता यशोदा का भाव वृंदावन का भाव है, इतना मीठा भाव है, तो इसीलिए उनको लक्ष्मी देवी से भी श्रेष्ठ माना जाता है। लक्ष्मी देवी का जो माधुर्य प्रेम है वो ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा शिथिल या कमजोर हो चुका होता है, परंतु माता यशोदा का प्रेम ऐसे ऐश्वर्य भाव से शिथिल नहीं हुआ होता है, इसलिए उनका प्रेम लक्ष्मी देवी के प्रेम से भी श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है?
ग्यारहवा स्कंद में कृष्ण बोलते कि हम ये ब्रह्मा शिव लक्ष्मी इतने प्रिय जितने की बोलते हो। ग्यारहवा स्कंद में कृष्ण बोलते हैं कि न कि ब्रह्मा न कि शिव न तो लक्ष्मी इतने प्रिय है जितने की बुद्धो प्रिय है। तो इधर हम यशोदा माता का सुनते हैं, तो इसमें अंतर क्या?
प्रश्न ये है कि ग्यारहवा स्कंद में ये बताया जाता है कि ब्रह्मा जी शिव जी आदि से ज्यादा प्रिय भगवान कृष्ण को है उद्धव, तो यहाँ यशोदा माता का नाम बताया गया है। हाँ, तो उद्धव भी इनसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। वैसे बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी पाद बताते हैं कि समस्त भक्तों में से वैसे महान व्यक्ति शिव जी माने जाते वैष्णव शंभु लोग उनसे भी श्रेष्ठ है प्रहलाद, प्रहलाद से भी ज्यादा श्रेष्ठ है पांडव, पांडवों से श्रेष्ठ है उद्धव, उद्धव से भी श्रेष्ठ है ब्रजवासी, ब्रजवासियों में से सर्वश्रेष्ठ है गोपियां। तो ये श्रृंखला है, ये क्रम है जिससे हम श्रेष्ठता जान सकते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। तो अवश्य उद्धव जो भगवान के बहुत निकट के सेवक हैं द्वारका में, उनका भी स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु उद्धव से भी श्रेष्ठ है ब्रजवासी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेजा ताकि वो जान ले कि वृंदावन के निवासियों की भक्ति जो है वो कितनी श्रेष्ठ है। और कोई प्रश्न? यहाँ प्रश्न ये है कि भगवद गीता में कहा गया है यदि मृत्यु के समय हम श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे तो हम उनके धाम चले जाएंगे, तो केवल मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करने से क्या हम प्रेम भक्ति को प्राप्त करेंगे, या हम केवल मुक्ति प्राप्त करेंगे और वैकुंठ चले जाएंगे? तो हमें प्रेम भक्ति के स्तर को हम कैसे प्राप्त करना है? हम श्री कृष्ण का स्मरण तब तक नहीं कर पाएंगे प्रेम से जब तक कि हम प्रेम भक्ति के स्तर में नहीं पहुंचते हैं। ये इतना आसान नहीं है भगवान का मृत्यु के समय प्रेम पूर्वक स्मरण करना। तो हमें साधन भक्ति के पद्धति को स्वीकार करके उस प्रेम भक्ति की अवस्था को प्राप्त करना है। साधन भक्ति करके हम धीरे धीरे भाव भक्ति की अवस्था को पहुंचते हैं और फिर उसे आगे बढ़ते हैं प्रेम भक्ति की अवस्था को। तो प्रेम भक्ति की अवस्था को प्राप्त करके हम मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, बल्कि हम जीवन मुक्त कहलाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करके और उसके बाद हम कभी प्रेम भक्ति प्राप्त करते नहीं। हमें पहले प्रेम भक्ति की अवस्था प्राप्त करनी चाहिए और फिर सारे हमारे और उद्देश्य पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए हमारे साधन भक्ति हमें बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। और कोई प्रश्न है?
भगवान को दूध पिला रहे थे तो दूसरे तरफ दूध उबाल रहा था, तो वो कृष्ण के लिए रखे थे दूध, वो तो वो बच्चे को नीचे उतर के वो लाने को गए, वो बंद करने को गए, तो इसमें कृष्ण गुस्सा होने की क्या जरूरत है? गुस्सा होकर मर्जी क्यों छोड़े?
प्रश्न ये है कि जब माता यशोदा श्री कृष्ण को छोड़ के चले गए उधर दूध चूल्हे के ऊपर उबल रहा था, तो क्योंकि दूध उबल रहा था माता यशोदा वहां चली गई, तो कृष्ण वहां गुस्से हो गए। क्यों गुस्से हो गए? ये प्रश्न है। आपके भी बच्चे हैं ना, उनके बचपन में जब आप उनसे कुछ दे रहे, आप उनको कुछ दे रहे हैं, फिर अचानक वो बंद कर देते हैं, बच्चे को क्या होता है? वो क्या समझ पाएगा कि आप उसके लिए ही कुछ दूसरा काम करने जा रहे हैं? कृष्ण भगवान है, अवश्य वो सब जानते हैं, लेकिन जब वो बाल लीला करते हैं तो अपने भगवत्ता को भूल जाना चाहते हैं, नहीं तो वात्सल्य प्रेम का आनंद कैसे ले सकते हैं? यदि वो याद रखते हैं असल में कि मैं भगवान हूं, तो कैसे भक्ति भाव से यशोदा माता को अपना मां समझते हैं? भगवान की कोई मां हो सकते हैं? भगवान की कोई पिता हो सकते हैं? भगवान ही सभी के माता है, पिता है। माता हम अस्य जगतो माता धाता पिता महा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी का पिता हूँ, माता हूँ, धाता हूँ, पिता महा हूँ। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए वो किसी को अपना माता चुन लेते हैं, किसी को अपने पिता चुन लेते हैं उनके शुद्ध भक्तों में से, और फिर उनसे ऐसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्यों गुस्सा हुए? क्योंकि वो इस वात्सल्य प्रेम का आनंद लेना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हैं, समस्त आध्यात्मिक भक्ति के रसों के आस्वादन करने वाले मूर्तिमान स्वरूप हैं। यदि वो गुस्सा नहीं होते तो माता यशोदा आके उनको दंड देने का प्रयास नहीं करती, फिर वात्सल्य रस का आदान प्रदान नहीं होता उतना। कौन से ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने कभी भी अपने छोटे बच्चों को डांटा नहीं होगा? ऐसे है कोई? संभव नहीं। और बचपन के गुण ही ऐसे होते हैं कि बच्चा शरारत करता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे वात्सल्य रस का आनंद लेना चाहते थे, इसलिए वो गुस्सा, झूठा झूठा गुस्सा, दिखने में सच भी, उनको भी लगा। हाँ, तो ये एक विषय है, बड़ा विषय है। ठीक है,
इसीलिए
और कोई प्रश्न? हाँ,
साधना भक्ति से प्रेम भक्ति में जाने की क्या सीढ़ी है?
साधन भक्ति से प्रेम भक्ति में जाने की क्या सीढ़ी है? वही जो हम साधन करते जा रहे हैं उसी को हमें करते जाना है। इसलिए हम प्रवचन की शुरुआत में कह रहे थे कि ये भक्ति साधन भी है और साथी भी है। हम उन्हीं चीजों को करते जाते हैं जो हम साधन भक्ति में करते थे। फर्क इतना है कि हम उसी चीज को प्रेम से करते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं पिछले श्लोक के तात्पर्य में कि भक्त जब सेवा करता है भगवान की, तो भगवान उस सेवा के कार्य से प्रसन्न नहीं होते। उस सेवा के कार्य को करते करते उस भक्त के हृदय में जो प्रेम है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उसके वश में आते हैं। समझ लीजिए, हम मंदिर का मार्जन कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए। अब भगवान केवल उस झाड़ू मारने के कार्य से प्रसन्न नहीं होते हैं। झाड़ू तो अनेक लोग मार रहे हैं दुनिया में, सबसे प्रसन्न नहीं होते। परंतु जब कोई व्यक्ति मंदिर का मार्जन करता है झाड़ू लेके, उसके हृदय में जो भक्ति होती है, जिस भक्ति के द्वारा वो झाड़ू मार रहा है, उस भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। कोई भगवान की आरती उतार रहे हैं, तो जितनी ज्यादा उस भक्त के हृदय भक्ति है आरती करने के लिए करते समय, उतनी ज्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि कोई यांत्रिक रूप से केवल घुमा रहा है दीप आदि, तो वो तो थोड़ी सेवा है, थोड़ी सेवा स्वीकार करेंगे, भक्त का लाभ होगा, थोड़ा बहुत भक्त प्रगति करेगा भक्ति में धीरे 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 से, परंतु इतने प्रसन्न नहीं होंगे भगवान। दूसरे शब्दों में एक उन्नत भक्त और नौसिखिया भक्त में अंतर यह होता है कि भक्ति के बाह्य कार्य दोनों करते हैं, परंतु एक उन्नत भक्त जो होता है उसके हृदय में भक्ति होने के कारण वही कार्य भगवान को ज्यादा प्रसन्न करते हैं। तो जो कार्य है वो एक वाहन है, हमारी भक्ति को पहुंचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण तक। इन कार्यों के द्वारा हम भगवान तक हमारी भक्ति को पहुंचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम तो ऐसे ही बैठ नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना है, इसलिए हम क्रियाशील रहते हैं। इसलिए भक्ति भी एक ऐसे पथ नहीं है जिसमें हम बहुत आलसी रहे, भक्त को भी क्रियाशील रहना चाहिए, भक्त कभी आलसी नहीं होता। नहीं कश्चित क्षणम अपि जाति तिष्ठते कर्म कृत, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जीव के लिए संभव नहीं है कि वो अकर्मकृत रहे, अर्थात वो कोई कर्म नहीं करे, कोई ना कोई कर्म तो हमें करते ही रहना है। इसलिए ऐसे कर्म हमें करने हैं, ऐसे कार्य करने हैं जो भक्ति के कार्य हैं। साधन भक्ति के अंतर्गत जिनका उल्लेख किया है रूप गोस्वामी पाद ने, ऐसे कार्यों को हमें करना है, और इनको करते करते हमें कुछ और इनमें डालना है, इन कार्यों में, वो है हमारी भक्ति, हमारा प्रेम। तो जैसे हम प्रगति करते रहते हैं भक्ति मार्ग में, वैसे वैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाती है, और वही कार्य हम करते हैं जो हम पहले कर रहे थे, परंतु तो अब वो कार्य भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। जैसे हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, कथा कहते हैं, शुरुआत में भी करते हैं कार्यों को, प्रेम भक्ति की अवस्था में भी कार्य होते हैं। तो ऐसी कोई नई चीज हमें नहीं करनी है, उन्हीं चीजों को हमें करते रहना है, लेकिन अच्छी तरह से करते रहना, भक्ति भाव से करते रहना। भगवान हृदय को देखते हैं, मनुष्य बाह्य अवस्था को देखता है ना, सही है। भगवान हमारे हृदय में कितनी भक्ति है वो देख रहे हैं, हालांकि बाह्य लक्षणों का भी महत्व होता है, इसलिए तो हम तिलक पहनते हैं, सर मंगवाते हैं, शिखा रखते हैं, एक प्रकार का वस्त्र पहनते हैं, ये सब चीजें भी महत्वपूर्ण है अपनी जगह है, परंतु ये अंतिम उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है प्रेम भक्ति, ठीक है। हरे कृष्ण। एक अंतिम प्रश्न, हाँ।
यशोदा अपने अनुमी इतना उनसे वात्सल्य प्रेम रखती थी, और गोपियां भी बहुत रखती थी, फिर भी वो वृंदावन को छोड़कर चले गए और फिर वापस वो आए ही नहीं, उनकी तड़प में ही रहे, हमेशा वो उनकी ही रहे, वृंदावन वासी, यशोदा माँ, गोपियाँ, राधा रानी, ये सब ऐसा भी उन्होंने ऐसा क्यों किया जब इतना, उनको तो पता था कि वो अंदरूनी इतना मेरे से प्रेम करती है।
प्रश्न ये है कि जब माता यशोदा का प्रेम इतना सर्वश्रेष्ठ है और सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, तो भगवान कृष्ण उनको छोड़ के मथुरा और द्वारका क्यों चले गए? इसके अनेक कारण हैं। उनमें से एक कारण ये है कि हम सबको दिखलाने के लिए कि ब्रजवासियों का प्रेम कितना श्रेष्ठ है, कितना शुद्ध है। जब उद्धव ने सोचा कि हम यादव सबसे अच्छे भक्त हैं, तो कृष्ण ने क्या क्या किया, उद्धव से क्या कहा, वृंदावन जा, वृंदावन जाके देखो कि असली भक्त कौन होते हैं। और उद्धव जब गए, उन्होंने देखा गोपियों की विरह भावना श्री कृष्ण के प्रति, और उद्धव समझने लगे मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं, और उद्धव के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि अगले जन्म में मैं एक घास का तिनका बन जाऊं ब्रज में, ताकि गोपियों की चरण कमलों की धूली मेरे ऊपर गिरती रहे। तो उद्धव समझ गए गोपियों की प्रेम की श्रेष्ठता उनके प्रेम को देखकर, और ये संभव इसीलिए हुआ कि श्री कृष्ण वहां से छोड़कर उनको चले गए, इसलिए मेरे धारणा हुई। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि वो आगे अपनी मथुरा लीला द्वारका लीला भी करना चाहते थे, उनके दूसरे भक्त भी राह देख रहे थे, उनको अनेक दुष्टों का विनाश करना था, जिस उद्देश्य के कारण वो यहाँ पे आए थे। तीसरी बात यह है कि वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के बाहर एक कदम भी नहीं लेते हैं। अप्रकट रूप में भगवान कृष्ण वृंदावन में ही रहते हैं और रहे उस समय। चौथी बात, क्योंकि ब्रजवासी सदैव श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक स्मरण करते थे, इसलिए कभी वो श्री कृष्ण से अलग हुए नहीं। हालांकि बाह्य रूप से ऐसे प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण को छोड़ के चले गए, परंतु श्री कृष्ण उनके हृदय में थे, इसलिए श्री कृष्ण से कभी वो अलग हुए नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे।